就是，الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وزدنا علما. تو سورہ مائدہ کی ایک درس قرآن کی کلاس ہوتی ہے جو منڈے کو ہی ہوتی ہے ہفتے میں ایک دن، اور باقی سورہ انعام کی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ ہفتے میں دو دن ہوتی ہیں، پیر کی صبح کو خواتین میں اور جمعے کی شام کو جو ہماری فیملی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں سورہ انعام کی تفسیر ہم دو دفعہ ہفتے میں پڑھتے ہیں، جبکہ سورہ مائدہ کی جو ہے وہ ہم صرف ایک دفعہ پیر کی شام کو پڑھتے ہیں، اور یہ ویسے تو مردوں کی کلاس ہے لیکن اس میں خواتین کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی جن کے پاس وقت ہوتا ہے تو وہ جوائن کر لیتی ہیں. تو اس میں ہم سورہ مائدہ کی ہماری آیت نمبر 33 اور 34، اس کے معروف مسائل پچھلی کلاس میں پچھلے ہفتے پڑھ رہے تھے، جن میں اللہ تعالیٰ نے جرم اور سزا کے چند قانونی ضابطے بیان فرمائے ہیں. اچھا، تو ہم صفحہ نمبر 119 پر تھے اور آپ کے سامنے سکرین کے اوپر سلائڈز اس کی شیئر ہوئی بھی ہوں گی، تو اس میں آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں حدود اور قصاص کی تعریفات بیان فرمائی تھیں، تاکہ وہ بھی تعریف سمجھائی تھی کہ تعزیر کس قسم کے کی سزا کو کہا جاتا ہے، اور ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یہاں تک شرعی سزاؤں، حدود، قصاص اور تعزیرات کی اصطلاحات شرعیہ اور ان کے متعلق ضروری معلومات کا بیان ہوا. یہ شرعی ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، حدود، قصاص اور تعزیرات. تو یہ ہم نے اب ان کے پڑھنی تعریفات وغیرہ، اب ان کے متعلق آیات کی تفسیر اور حدود کی تفصیل دیکھیے. پہلی آیت میں ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ اور محاربہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا وہ یعنی پہلے ایک بیس بنا دی، بیک گراؤنڈ بنا دیا کہ بھئی حدود کس کو کہتے ہیں اور قصاص کس کو کہتے ہیں، تعزیرات کن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایکچوئل آیات کی بات ہو رہی ہے. تو آیت کیا تھی؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کے سوائے اس کے نہیں کہ یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، یعنی فساد کرنے کے لیے سعی کرتے ہیں. سعی کا مطلب اگزیکٹلی دوڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مشقت کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب سعی کے مفہوم میں داخل ہوتا ہے. تو اب یہ آیت جو ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ اور زمین میں فساد کا کیا مطلب ہے، اور کون لوگ اس کے مصداق ہیں، یعنی کون لوگ محاربہ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ. لفظ محاربہ حرب سے ماخوذ ہے، یعنی اس کے جو روٹ ورڈ ہے وہ حربن ہے، جرن بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اور ان جی فارم بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو ماخذ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مصدر لفظ زیادہ گرامر کی لینگویج میں مصدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو محاربہ جو ہے نا یہ حرب سے نکلا، اور اس کے اصلی معنی सल्ब करने और छीन लेने के हैं, और मुहावरात में यानी बोलचाल में यह लफ्ज सलम के बिलमुकाबिल इस्तेमाल होता है। सलम का मतलब क्या? जिसके मानी अमन और सलामती के हैं। तो सलम के बिलमुकाबिल यानी ऑपोजिट जो है ना, वो हर्ब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो मालूम हुआ कि हर्ब का मफहूम बदअमनी फैलाना है। तो जाहिर है कि इक्का दुक्का चोरी या कत्लो गारत गरी से अमने आम्मा सलब नहीं होता। चोरी की छोटी मोटी वारदातें कभी कभार हो गई, या इवन किसी को कत्ल भी कर दिया, तो उस जो है ना उमूमी वो खत्म नहीं होता। आपका जो लफ्ज है ना, ये तो सर्ब के मानी में इस्तेमाल हुआ ना, यानी किसी चीज को आप सक आउट कर लें, सक आउट, ठीक है, उसको आप जो है ना बिल्कुल खत्म कर दें, ये होता है सर्ब का मतलब ना, बल्कि खींच के निकाल लेना सक आउट करने के ही मानी में होता है। जैसे कोई चीज किसी के अंदर मौजूद है, उसको आप उसमें से खींच के बाहर निकाल लेना। तो अब किसी बंदे को कत्ल कर दिया या किसी को गारत करी, कभी पानी इसी में आता है कि भाई इससे जो है ना वो जनरल पीस जो है ना वो खत्म नहीं होता, बल्कि ये सूरत जब ही होती है जब कोई ताकतवर जमात रहजनी और कत्लो गारत गरी पर खड़ी हो जाए। ठीक है, यानी इक्का दुक्का कत्ल हो गया, इक्का दुक्का गारत गरी हो गई, तो उससे अमने आम्मा सलब नहीं हो जाता, बल्कि बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से कोई जमात हो। ठीक है, क्योंकि जब भी जमात होगी ना, तो वो कभी भी कोई जमात जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बगैर चली नहीं सकती। डिसऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो जमात नहीं होती। ठीक है, तो जमात के लिए यू ऑलवेज हैव टू हैव एन अमीर। ठीक है, अगर अमीर नहीं होगा तो फिर वो जमात तो मुंतशिर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से जमात के अंदर जो है वो कुछ रूल्स होते हैं, वो अमीर जो है वो नाफिज करते हैं ना, कि भाई ये ऐसे होगा, ऐसे किया जाएगा, इस वक्त हम खाना खाएंगे, इस वक्त हम सोएंगे, इस वक्त हम जागेंगे, इस वक्त हम काम पे जाएंगे, इस वक्त हम काम से वापस आएंगे, काम के ऊपर ये करना होगा, ऐसे काम किया जाएगा। तो ये बायलॉज होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बायलॉज होती है। ठीक है, तो बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से रहजनी की जाए और कत्ल और गारत करी की जाए। ठीक है, तो इस पर कोई जमात खड़ी हो जाए ना ऑर्गेनाइज तरीका, तब होता है ये काम, यानी अमन आमा सल्ब होता है। ठीक है, तो विज यानी एक इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज नहीं होती। इसीलिए हजरात फुकहा ने, फुकहा कौन होते हैं, बात की समझ रखने वाले ना, गहराई में जिन्होंने जाकर के समझा होता है बात को, उनको फकीह कहा जाता है। तो हजरात फुकहा ने इस सजा की का मुस्तहिक सिर्फ उस जमात या फर्द को करार दिया है जो मुसल्लह होकर अवाम पर डाके डाले। ठीक है, अब फर्द से मुराद जो है ना वो वही है कि यानी रहजनी का मामला करे। अब वो जो फर्द है, अब ये कहें कि भाई अच्छा वो जो इक्का दुक्का वो भी तो फर्द नहीं किया था, तो अब यहां पर फर्द का लफ्ज क्यों लेकर के आया, यहां पर तो सिर्फ जमात का लफ्ज होना चाहिए था। ठीक है, तो भाई ये जो फर्द कर रहा है ना, ये भी एक्चुअली एक जमात के नजम के तहत ही ये काम कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेशक वो उसने एक खास डाका जो है वो अकेले डाला है, लेकिन इसको इक्का दुक्का इनफरादी अमल नहीं कहा जाएगा, बिकॉज उसकी बिलोंगिंग है किसी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के साथ ना। तो इस सजा का मुस्तहिक सिर्फ उस जमात या फर्द को करार दिया है जो मुसल्लह होकर अवाम पर डाके डाले। ठीक है, वरना इक्का दुक्का जो कत्ल किया गया, तो वो भी तो असलहे से कत्ल किया जाता है ना। ठीक है, असलहे से कत्ल यानी कत्ल जो है वो आप जो है वो पत्थर से तो नहीं करते ना, छुरी से करेंगे, छुरी भी तो असलहा है, तलवार से करेंगे या बंदूक से करेंगे। ठीक है, तो वो जो कत्ल है जिसको के यहां पर इक्का दुक्का की कैटेगरी में डाला गया है, वो भी असलहे से ही हुआ था। ठीक है, तो फिर इसमें और उसमें क्या फर्क है भाई? ये जो इनफरादी तौर पर कत्ल कर रहा है ना, ये फिर ऑर्गेनाइज ग्रुप का हिस्सा है, बेशक ही इज ऑपरेटिंग ऑन एन इंडिविजुअल लेवल फॉर सम पर्पस, फॉर सम रीजन इसको अलग जो है वो एक काम के लिए भेजा गया है। ठीक है, क्या लिखा? डज इट मीन ऑर्गेनाइज गैंग्स डूइंग रॉबरीज? हाँ, ऑर्गेनाइज गैंग्स जो है ना, फिर वो यानी रॉबरीज का जो लफ्ज है ये इसी में आता है, डाकू यानी डकैती के मानी में इस्तेमाल होता है ना। स्टीलिंग का जो लफ्ज अंग्रेजी का है ना, वो फिर चोरी के माने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी आपने चुपके से जा करके, बेशक चोरों का एक ग्रोह था तो वो उसमें से जो है ना वो फैल गए किसी, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी सी कोई वो हो रही थी, इवेंट हो रहा था, अब चोरों का ग्रोह उसके अंदर आके फैल गया, किसी ने वहां जाके चुपके से कोई चीज उठा ली, किसी ने कहीं जाकर चुपके से कोई चीज उठा ली, किसी ने कहीं जाकर चुपके से कोई चीज उठा ली। ठीक है, तो इसको स्टीलिंग कहा जाता है, इसको रॉबरी करना नहीं कहा जाता। बैंडिट्स, राइट, गैंग्स ऑफ बैंडिट्स इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, रॉबर्स, बैंडिट्स या डाकू। तो मुसल्लह होकर अवाम पर डाके डाले, आम लोगों पर डाके डाले और हुकूमत के कानून को कुव्वत के साथ तोड़ना चाहे, जिसको दूसरे लफ्जों में डाकू या बागी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हुकूमत का कानून तो चोर भी जो है वो तोड़ रहा होता है ना, क्योंकि चोरी करना भी तो हराम है ना, या चोरी करने को भी जो है वो हुकूमत ने मना किया, लेकिन कुव्वत के साथ वो चोरी नहीं कर रहा होता है ना। ठीक है, तो ये कुव्वत के साथ उनके कर रहे होते हैं, और कुव्वत जो होती है वो जमात के साथ होती है, सिर्फ असलहे से कुव्वत नहीं आती। ठीक है, कुव्वत जमात के साथ आती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने असलहे से किसी को कत्ल कर दिया, उसको कुव्वत नहीं कहा जा रहा, इसको कुव्वत कहा जा रहा है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम काम हो रहा है, तो फिर तो कुव्वत कहां से आई? जमात से आई ना। ठीक है, तो इसको डाकू या बागी कहा जा सकता है। आम इनफरादी जराइम करने वाले चोर या गिराहकट, गिराहकट से मुराद वो जो जेब कतरे होते हैं, वो इसमें दाखिल नहीं है। इसी वजह से फिकह की किताबों के अंदर भी ये जो है वो यानी छुप करके चोरी करना, क्योंकि वो जो जो जेब भी काटता है ना, तो वो पता ही नहीं चलता जिसकी जेब कट रही है कि उसकी जेब कट चुकी है। ठीक है, तो वो एक अलग किस्म का इंफरादी जुर्म होता है, वो इसमें दाखिल नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात फरमाता है कि यहां ये बात काबिल गौर है कि इस आयत में मुहारबे को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया है, यानी उनसे मुहारबा किया जा रहा है, हालांकि डाकू या बगावत करने वाले जो मुकाबला या मुहारबा करते हैं वो इंसानों के साथ होता है। अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ता ना आकर के, ना नबी अलैहिस्सलाम से लड़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम तो 1400 साल पहले दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो फिर ये क्या? तो वजह ये है कि कोई ताकतवर जमात जब ताकत के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को तोड़ना चाहे, ठीक है, कानून क्या होता है? जो अहकामात होते हैं ना, ऑर्डर्स जो होते हैं, कमांड्स जो होती हैं, उन्हीं को मिल करके कानून कहलाता है वो, राइट? तो अहकामात ये दीन है ना। ठीक है, कई दफा पहले भी बात हो चुकी कि दीन के जो असल है वो तो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, तो अहकामात के मजमुए को कानून कहा जाता है, उस कानून को कोई तोड़ना चाहे तो वो अल्लाह उसके रसूल से जंग लड़ रहा है। ठीक है, वैसे तो हमें खाली अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो पता चल गया इतने साल गुजरने के बाद कि सूद जो है ना वो अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता चल गया, वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अल्लाह के कानून के साथ लड़ना, ये अल्लाह के साथ जंग नहीं समझते हम, पता नहीं क्यों इसका जिक्र ही नहीं कोई करता, ये भी अल्लाह के साथ जंग है। कुरान अजीम शान क्योंकि साइड पे रख देते हैं, तो फिर उसके बाद ये भूल जाते हैं इस तरह की चीजों को। ठीक है, तो भाई अल्लाह के कानून को तोड़ना चाहे तो वो मुहारिबा हर्ब अल्लाह और उसके रसूल के साथ। ठीक है। तो अगरचे जाहिर में इसका मुकाबला आवाम और इंसानों के साथ होता है, लेकिन दर हकीकत उसकी जंग हुकूमत के साथ है, और इस्लामी हुकूमत में जब कानून अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफिज हो तो ये मुहारबा भी अल्लाह व रसूल ही के मुकाबले में कहा जाएगा। ठीक है, जब इस्लामी हुकूमत में कानून अल्लाह और रसूल का नाफिज हो, या का नाफिज हो, किस पे हम जोर डालें, नाफिज पे जोर डालें या का पे जोर डालें, ठीक है, या अल्लाह उसके रसूल पे एम्फेसाइज करें, ठीक है, तीनों पे करना चाहिए वैसे तो, अल्लाह और रसूल का, ठीक है, यानी इजाफत किसका, अल्लाह और रसूल का, बरतानिया का नहीं, अमेरिका का नहीं, चाइना का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, या गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का नहीं है, इब्राहिम लिंकन, इब्राहिम लिंकन साहब का वाला नहीं, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट अवामुन्नास की है। अवामुन्नास क्या होते हैं, कल अनाम, राइट, अनाम किसको कहते हैं, जिसको हम उर्दू में मवेशी कहते हैं और पंजाबी में क्या कहते हैं, डंगर, राइट, तो गवर्नमेंट ऑफ द डंगर बाय द डंगर फॉर द डंगर, ठीक है ना, डंगर कहते हैं ना मवेशी को, और मवेशी को जो है वो अरबी में अनाम कहते हैं, और अल अवाम कल अनाम, अवाम उन्नास तो अनाम की तरह से होती है, ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट नहीं बल्कि अल्लाह की गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकामात के मुताबिक फैसले करती हो, ठीक है। तो जब इस्लाम का हुकूमत, इस्लामी हुकूमत में अल्लाह का कानून नाफिज होगा तो फिर ये मुहारबा जो है वो अल्लाह उसके रसूल ही के मुकाबले में कहा जाएगा, ठीक है। अब हमारा डिलेमा क्या है, हमारा डिलेमा बड़ा अजीब है, यानी मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का डिलेमा, डिलेमा समझते हैं क्या होता है, डिलेमा कहते हैं उर्दू में क्या तर्जुमा होगा डिलेमा का, डिलेमा मुसीबत, या अजीब गरीब किस्म सिचुएशन, हमारी अजीब गरीब सिचुएशन पता है क्या है, अलमिया, हाँ डिलेमा के लिए अलमिया, मखमसा, मखमसा इतना नहीं, अलमिया ज्यादा मुनासिब लग रहा है मुझे, तो हमारा अजीब गरीब किस्म का डिलेमा है, ठीक है, वो पता है एक शेर से साबित होता है, वो शेर बड़ा मजे का है, वो है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना बुत का विसाल मिला और ना खुदा मिला, ना यानी अल्लाह ताला भी ना मिला और बुतों ने भी कबूल ना किया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अब ये कैसे है हमारा डिलेमा, ये डिलेमा हमारा ऐसे है कि चाहे हम जैसे भी हैं लेकिन नाम के तो मुसलमान है ना, ठीक है ना, चाहे जैसे भी हैं लेकिन नाम के तो मुसलमान हैं, और हमारा मुल्क चाहे जैसे भी उसके अंदर मामला होता है लेकिन वो भी नाम का मुसलमान ही है ना, इस्लामी जमहूरिया ये पाकिस्तान उसका नाम है, और अभी तक है अलहमदुल्ला, एक आध कोशिशें कभी कभार कोई ना कोई करता रहता है लेकिन उसकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होती अलहमदुल्ला, ठीक है, तो नाम के भी मुसलमान हैं हम इनफरादी तौर पर, और पूरा के पूरा मुल्क का नाम भी मुसलमान है, और इससे भी बढ़कर के कि हमारा जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू, अच्छा अंग्रेजी में है वैसे लेकिन तने ठीक है, अंग्रेजी में तो क्या हो गया भाई, अंग्रेजी भी तो अल्लाह ताला की इंस्पायर्ड लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है ना, ठीक है, तो खाली अंग्रेजी लैंग्वेज की वजह से तो नहीं आप किसी को बुरा कह सकते, ठीक है, तो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह सुबहान तआला, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो हम क्या हैं, विसाले सनम से तो हम हो गए महरूम, ठीक है, विसाले सनम से हो गए महरूम, लेकिन अब दूसरी तरफ जाना चाहिए था ना, फिर खुदा मिलना चाहिए था ना, अब खुदा के पास जाना चाहिए था, खुदा का विसाल नसीब होना चाहिए था, वो भी नसीब नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं नसीब हो रहा, क्योंकि हरकतें जो है वो सारी की सारी सनम को खुश करने वाली, ठीक है, हरकतें सारी की सारी सनम को खुश करने वाली, यानी जहन साजी और कल्ब साजी का सारा जो बंदोबस्त है, तालीम वो सनम वाली, बचगान के लिए भी तालीम सनम वाली और बालिगान के लिए भी तालीम सनम वाली, ठीक है। तो स्कूलों कॉलेजों के अंदर भी जहां पे बच्चे पढ़ते हैं वहां पर भी तालीम लॉर्ड ब्लैक फेस की, मुंह काले या मैकॉले, ठीक है। और जब बड़े होकर के बाहर निकलते हैं तो मीडिया उसकी तालीम, वो भी सारा का सारा तालीम बालगा का सिस्टम है, वो भी जो है वो काफिरों का, उसके अंदर भी झूठ तो धोखा तो दगा तो फरेब तो बेहयाई, राइट, तो मौसीकी, तो तालीम का सारा का सारा निजाम जो है वो अल्लाह के खिलाफ, ठीक है। और ये तो निजाम की बात हो गई ना, तालीमी निजाम, और जो है वो मीडिया का निजाम, फिर आप इनफरादी तौर पर देखें, हर बंदा झूठ झूठ के बगैर जो है वो गोया कि खाना हजम नहीं होगा जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, जब तक दूसरों को धोखा नहीं देंगे उस वक्त जो है ना वो पानी का घोट जो है वो गले से नीचे नहीं उतरेगा, इनफरादी तौर पर, ठीक है। खानदानी निजाम को देखो तो सारा का सारा खानदानी निजाम जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के निजाम के खिलाफ, हालांकि हुकूमत का कोई प्रेशर नहीं होता, ये नहीं होता कि सदर मुमलिकत आकर के जो है ना वो बाप को हुक्म दे रहे हैं कि तुम जो है वो अपने बच्चों को ये करो, नहीं, कोई हुक्म नहीं दे रहा होता सदर मुमलिकत, ना वजीर आजम ना कोई, अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं ना, उन्होंने तो खाली इशारे छोड़े हुए हैं, उन इशारों के ऊपर अमल तो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, इनफरादी जिंदगी के अंदर अपनी मर्जी से झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है, धोखे दे रहे होते हैं। तो अब इससे क्या हुआ, ना खुदा ही मिला, इस तरह से तो खुदा नहीं मिलता ना, ठीक है। ईमान का भी हाल बहुत खराब कि कुरान मजीद की आयतों का ही इनकार करके बैठे हुए हैं, राइट, कुरान मजीद के अहकाम को के ऊपर क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता जी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं अमल सुई जुज़ा भी, जो गुनाह करेगा वो उसकी सजा पाएगा, और हम कहते हैं कुछ नहीं होता, तो कुरान की आयत का इनकार कर रहे हैं कि इकरार कर रहे हैं ये बोल करके, या दिल के अंदर पक्का, जब ये पक्का ये बांध लिया कि कुछ नहीं होता, तो ये तो इनकार कहलाता है ना, इसी को तो शक कहते हैं, जुबान से अदा नहीं किया लेकिन दिल में तो आपने इसका इनकार कर दिया है, तो ये इनकार करने वालों में फिर बंदा शामिल हो जाता है ना, इकरार करने वालों में तो बंदा शामिल नहीं होता, जब वो कहता है कुछ नहीं होता चाहे दिल में का क्यों ना कहा उसने, तो अब खुदा तो नहीं मिलेगा इस तरीके से, नबी का इनकार करने के ऊपर, कुरान का इनकार करने के ऊपर, और उधर जो है वो काफिर भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, है ना, कि वो अपनों में कबूल कर ले और बिल्कुल अपने जैसा जो है वो मामला करे, जैसे यूरोप के साथ, जैसे वो तुर्की टर्की का भी तो यही मामला है, टर्की है हर वक्त जो है वो नेटो 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 नेटो, लेकिन वो उसको धुतकारते ही रहते हैं, और धुतकार ही पड़ती रहती है उसको, किस वजह से, वो भी तो नाम के ही मुसलमान है, राइट। तो ये है हमारा अलमिया, ठीक है। तो भाई क्या कहते थे हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह कि दोरंगी छोड़ दे यक रंग बन जा, दोरंगी छोड़ दे यानी दोनों को खुश करने की कोशिश जो है ना वो छोड़ दे, यक रंग बन जा, सरासे सरासर मोम बन जा या संग बन जा, या तो नरम हो जाओ भाई, अपने दिल को नरम कर लो तौबा के आंसुओं के जरिए से, नदामत के आंसुओं से अपने दिल की जमीन को नरम कर लो, या संग बन जाओ, पूरे के पूरे पत्थर बन जाओ, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुफर की दावत दे रहे हैं, नऊज बिल्ला, कि भाई काफिर बन जाओ, लेकिन बात समझने की कोशिश करो ना यार, कब तक जो है वो दोनों को खुश करने की नाकाम कोशिशें करते रहोगे, एक भी खुश नहीं हो रहा तुमसे, एक भी खुश नहीं हो रहा तुमसे, ठीक है। तो बस तौबा कर लो यार अल्लाह के बंदे, ये कोई मोतजिला वाला मसला कोई थोड़ी है कि मोतजिला ने कहा गुनाह कबीरा किया तो अब काफिर हो गए, अब बस गया, मायूसी हो गई थी अब गया, नहीं, अहले सुन्ना वाल जमात का ये अकीदा कोई थोड़ी है कि गुनाह कबीरा किया तो अब काफिर हो गया, आगे से तौबा का कोई जिक्र ही नहीं, अल्लाह के बंदे गुनाह किया काफिर होए या ना होए तौबा तौबा का दरवाजा तो फिर भी खुला है ना, जब तक मौत नहीं आती। तभी तो जिंदा हो ना, क्लास में बैठे हो, सुन रहे हो कानों से, तो जिंदा हो ना, तो अभी क्यों नहीं तौबा कर लेते, इसी वक्त क्यों नहीं तौबा कर लेते, क्लास के खत्म होने का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, नहीं मैं क्या दोनों तरफ जो है ना वो पेंगे बढ़ाने की कोशिश में अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूं, जाया कर रही हूं, खवातीन भी सुन रही है, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मुझे इस शिर्क से माफ से मुझे माफी अता फरमा दीजिए, नहीं इस कुफर से आप मुझे माफी अता फरमा दिए, मैं कलमा पढ़ के फिर से मुसलमान होता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अभी इसी वक्त दोबारा से मुसलमान हो जाए, कोई दरवाजा बंद नहीं है तौबा का। ठीक है, तो ये हमारा डिलेमा। तो इस्लामी हुकूमत, कानून अल्लाह का और रसूल का नाफिज हो, तो ये मुहारबा भी अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में कहलाएगा। ठीक है, खाली जो है वो कुरान की आयात पढ़ लेने से तो नहीं होता ना, वो भाई आपने करा क्या है, कौन कौन सी वाली आपने किसको दे देना सजा, एक कातिल को जो है वो सजा दे ना, राइट, सूली पर चढ़ाए ना, तो अल्लाह मदद करेगा, तो फिर ट्रम्प क्या कर लेगा फिर तुम्हारा, जब अल्लाह की मदद आएगी तो ट्रम्प क्या करेगा, चाहे वो कितने ट्रंप मिलकर के आ जाएं, लेकिन तुम्हें चाहिए ही नहीं अल्लाह की मदद, तो फिर तुम अपने आप को भी धोखा ही दे रहे हो, दूसरों को क्या धोखा दोगे। और ये सारी ऊपर वालों के मसला नहीं है, तो सारे ट्रंप की बात तो हम फौरन से करते हैं ना, जैसे पता नहीं हमारा सारा डायरेक्ट ताल्लुक ट्रंप के साथ है, नहीं, तुम्हारे घर के अंदर जिन लोगों के खौफ की वजह से तुम घर के अंदर सच नहीं बोलते हो, नहीं? अपने खानदान में सच नहीं बोलते हो, अपने खानदान में जो है वो तुम अल्लाह के हुक्म की जो है वो ख्याल नहीं करते हो, तो जो मैं दिन जिन खानदानी ट्रंपों का तुम्हें खौफ होता है, खानदानी ट्रंप्स, राइट, घरेलू ट्रंप्स, हर घर में भी तो ट्रंप है ना, हर खानदान में भी तो ट्रंप है ना, ठीक है, तो अगर तुम अल्लाह को राजी करोगे तो क्या अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा उन ट्रंप्स के खिलाफ घरेलू लेवल के ऊपर? नहीं, अल्लाह को थोड़ी करता है, अल्लाह का ये काम को थोड़ी है मदद मदद करना, हमें तो अपनी मदद आप करनी है, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं बदलते, ये जहालत का जो है ना ये शेर जो है वो हमारे सरों पे सवार हुआ हुआ है कि खुदा मदद नहीं करता जब तक हम खुद अपनी मदद ना करें, तो अब इसमें खुदा तो निकल गया ना पिक्चर में से, ठीक है ना, ये शेर भी जो है ना वो फिर हमने मजेदार किस्म की अपनी मर्जी की तफसीर करी है शेर की, खुदा को निकाल दिया पिक्चर में से, और सारी मदद अपनी मदद आप, ठीक है ना, अपनी मदद आप, अब मुसीबत पड़ गई कि यार मैं अपनी मदद कैसे करूं, मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, मैं कैसे अपनी मदद करूं, है ना भाई, मैं कैसे जो है वो अपने खानदानी ट्रंप का मुकाबला करूंगा, मैं कैसे अपने घर की ट्रंप का मुकाबला करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, तो मैं अपनी मदद आप तो कर नहीं सकती, और जाहिर है खुदा ने तो मेरी मदद करनी नहीं जब तक मैं अपनी मदद आप ना करूं, ऐसे शैतान फंसाता है, राइट, ऐसे शैतान जो है ना वो इंसान को फंसाता है कि तुम अल्लाह ताला से रुजू करो ही नहीं, और उसके ऊपर शेर भी याद दिलाता है, खुदा उस कौम की उस वक्त तक मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते। हालांकि कुरान मजीद की जो आयत है जिसकी बुनियाद पर ये शेर पढ़ा जाता है, कुरान मजीद की इस आयत का ये मतलब है ही नहीं कि जो हमारी बुरी हालत है इस बुरी हालत को अच्छी हालत में तब्दील करने के लिए अपनी मदद आप करनी होगी, नहीं, ये इसका मतलब है ही नहीं, राइट, आयत क्या है वो तो फादे कराम मुझे याद दिलाएंगे, फिर मुझे सर्च करनी पड़ेगी, क्या है वो आयत, हाफिज साहब की भेजी थी, अल्लाह करे मिल जाए, इन अल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद ना बदले, अल्लाह के बंदे ये नेमत की हालत की बात हो रही है, कि अल्लाह ताला ने हर कौम को, और हर कौम का मतलब उसका जो हर फर्द होता है, उसको नेमतों में पैदा किया है। बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्टेट जो है वो नेमतों वाली स्टेट है। जब तक वो नेमतों की नाकदरी नहीं करती, ना शुक्री नहीं करती, अल्लाह ताला उस वक्त तक नेमतों को वापस नहीं लेते, राइट? उसकी हालत नहीं बदलते, यानी नेमत की हालत से अजाब की हालत में नहीं लेकर के आते, जब तक कि वो कौम खुद जो है वो अपने नेमतों की नाशुक्री नहीं करती, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं करती। ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में थी ये आयत कि अल्लाह ताला नेमत वापस नहीं लेते। अब जब नेमत वापस चली गई, हमारी मुसीबतों में पूरी कौम मुब्तला हो गई, अब कहते हैं जी मेहनत करो मेहनत करो वापस नेमतों में आने के लिए। अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह की नेमतें हैं उन पे अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते? अल्लाह ताला के हुक्मों को क्यों नहीं मानते? सिर्फ अपनी मदद आपके उसूल को सामने क्यों रख करके रखा हुआ है कि अल्लाह नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए? जाहिर सी बात है, अल्लाह तुम्हारे तुम्हारी पिक्चर से गायब है, इसी वजह से वाकई अल्लाह नहीं है तुम्हारी पिक्चर के अंदर, इस वजह से तुम्हें अपनी मदद आप करनी है, राइट? तो मदद, अपनी मदद आप में लगे हुए सारे के सारे। मेहनत करो, तालीम हासिल करो, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करो, तो और जो है वो उठक बैठक करो, तो तंजीमें बनाओ, तो तहरीकें बनाओ, तो जुलूस निकालो, तो जलसे जलसे करो, तो तकरीरें करो, तो बयानात दो, तो एहतजाज करो, सब काम कर लो सिवाय अल्लाह की मदद के लिए की तरफ तवज्जो करने के, क्योंकि अल्लाह तो नजर नहीं आता है, अल्लाह तो पिक्चर से गायब किया हुआ है ना, अल्लाह तो नजर ही नहीं आता, तो जो नजर नहीं आता उसकी तरफ कैसे तवज्जो करें? नजर आता है अपना हाथ, नजर आता है अपनी ताकत, नजर आती है अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, अपनी अकल, अपनी मेहनत, अपना खानदानी निजाम, अपना ताल्लुक, ये सब नजर आता है। तो अब इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हालत को तब्दील करने के लिए, ठीक है? ये कुरान मजीद के साथ तमाशा करने का ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ये अल्लाह का कलाम है, इसके साथ तमाशा करोगे ना तो तुम्हारे साथ ही तमाशा होगा और किसी दूसरे के साथ तमाशा नहीं होगा, ठीक है? तो भाई अल्लाह ताला को राजी करने के लिए मेहनत करेंगे तो अल्लाह क्यों नहीं मदद करेगा यार? तो खुलासा ये है कि पहली आयत में जिस सजा का जिक्र है, ये उन डाकुओं और बागियों पर आयद होती है जो इज्तिमाई कुव्वत के साथ हमला करके अमन आमा को बर्बाद करें। तो ये जितने हैं जो आते हैं आपके मुल्क के अंदर, आके बम लगा के फट जाते हैं या कत्ल कर देते हैं आकर के, कभी अवाम को कत्ल करते हैं, कभी जो आपके मुहाफिज दस्ते होते हैं उन्हीं को आके कत्ल कर देते हैं, वो सब इसके अंदर शामिल है। उलमाए कराम मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उलमा को मानने वाले हैं और उनकी मानने वाले भी, उनको भी मानते हैं और उनकी भी मानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये लोग जो हैं ये डाकुओं में ही आते हैं, ठीक है? वो लोग हैं इस किस्म के जो कि मुल्क में आकर के फसाद मचा रहे हैं, वो कोई इस्लामी हुकूमत कायम करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे होते हैं, वो भी झूठ बोल रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही झूठे, राइट? तो मसला तो भाई ये है ना कि भाई आप तो कम से कम तौबा कर लेना, जो अपने हैं, जो हम हैं, जो हमारे हैं, हम तो अल्लाह ताला से रुजू कर लेना, मदद तो अल्लाह ने करनी है ना यार, ठीक है? उनको ठीक कौन कह रहा है, वो तो है ही गलत और वो तो है ही इस किस्म की सजा के मुस्तहिक, जो कि डाकुओं की और रहजनों की सजा होती है और बागियों की सजा होती है, वो है इसके मुस्तहिक, ठीक है? लेकिन आप भी तो अकल के नाखून लेना कुछ यार, हमारे काबरीन यही तो कहते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे इस्लाम के ऊपर कुछ अमल, ठीक है? तो फरमाते हैं कि जी ये उन डाकुओं और बागियों पर आयद होती है जो इज्तिमाई कुव्वत के साथ हमला करके अमन आमना को बर्बाद करें और कानून हुकूमत को ऐलानिया तोड़ने की कोशिश करें, और जाहिर है कि उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, माल लूटने, आबरू पर हमला करने से लेकर कत्लो खून रेजी तक, सब इसके मफहूम में दाखिल है। इसी से मुकातला और मुहारबा में फर्क मालूम हो गया कि लफ्ज मुकातला खूनरेज लड़ाई के लिए बोला जाता है, गो कोई कत्ल हुआ या ना हो, ठीक है, यानी मुकातला जो बाकायदा असलहे के साथ आप किसी के साथ लड़ते हैं, तो जिमनन माल भी लूटा जाए और लफ्ज यानी मुकातले में फिर चाहे माल लूटा गया हो या माल ना लूटा गया हो, लेकिन आप किसी के साथ असलहे के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो उसको मुकातला कहा जाता है। और लफ्ज मुहारबा जो है ये ताकत के साथ बदअमनी फैलाने और सलामती को सलब करने के मानी में, ठीक है, यानी आगे आपके निहत्ते अवाम है, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है आप जाकर के जो वो हमले कर रहे हैं, या इवन जो अगर वो हैं भी कोई उनके पास हो सकता है क्योंकि असलाह हो अवाम के पास, ठीक है, लेकिन आपने उनको मौका तो नहीं दिया ना, उनको बताया तो नहीं ना कि जी आप अपना असलाह निकालें पर हमारे साथ मुकातला करें, बल्कि आपने उनको जाकर के मार दिया, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हर वक्त आए दिन खबरें आती रहती हैं। तो ये मुहारबा जो है वो उसके ऊपर इसका इतलाक होता है, इसीलिए ये लफ्ज इज्तिमाई ताकत के साथ आवाम की जानो माल व आबरू में से किसी चीज पर दस्त दराजी करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको रहजनी डाका और बगावत से ताबीर किया जाता है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज तरीके से, चाहे वो डाकुओं की कोई जमात हो, आपके अपने कच्चे के डाकू हो वो भी इसमें शामिल होते हैं, और सरहद पार से आए हुए हो वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, और अंदर के जो है वो जो सरहद पार वालों से मेल जोल करके इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल है, ठीक है, तो कच्चे के डाकू तो किसी सरहद पार वाले से उनका नहीं होता ना मामला, लेकिन वो भी इसमें शामिल है, ठीक है, सिंध के डाकुओं का आपको कच्चे का डाकू कहते हैं गालिबन उन लोगों को, तो उनको भी शामिल किया है इसके अंदर, और सरहद पार वाले जो अनासर होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो गए, तो इस जुर्म की सजा कुरान करीम ने खुद मुतय्यन फरमाई और बतौर हक़ुल्लाह यानी सरकारी जुर्म के नाफिज किया, जिसको इस्तिलाह शराह में हद कहा जाता है। अब सुनिए कि डाका और रहजनी की शरी सजा क्या है, ठीक है, तो जिस मुल्क का दस्तूर मुसलमान हो, इस्लामी हो, ठीक है, चाहे बुनियादी लेवल पे क्यों ना है लेकिन है, और जिसके अंदर नाम के मुसलमान रहते हों, तो अहलुल्लाह ने सिर्फ जो है वो किताबें पढ़े हुए उलमा नहीं, बल्कि जो अहलुल्लाह हैं, साहिब निस्बत हैं, अल्लाह के औलिया के वाकई में शुमार होने के काबिल हैं, उन्होंने कहा कि ये मुल्क जो है ये इस्लामी मुल्क कहलाए, ठीक है, ये इस्लामी मुल्क कहलाएगा, चाहे नाफिज ना कर रहे हो कहलाएगा वो इस्लामी मुल्क, वो नाफिज करने पे तो अल्लाह की मदद आएगी ना, वो तो नहीं आ रही, वो ये नहीं कह रहे अहलुल्लाह कि नहीं जी अल्लाह की मदद भी आ रही है बेहयाई के बावजूद, अल्लाह की मदद भी आ रही है मौसीकी के बावजूद, अल्लाह की मदद भी आ रही है जुल्म के बावजूद, ये नहीं कहा अहलुल्लाह ने, पाकिस्तान में अल्लाह की मदद आ रही है, ठीक है, ये नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इस मुल्क को आप काफिर मुल्क नहीं कह सकते, ठीक है, किस लिए, दस्तूर की वजह से और नाम के मुसलमानों की वजह से, और इस वजह से कि ये जो मुसलमान हैं ये किसी वक्त भी इससे तौबा करके वो अल्लाह का कानून नाफिज कर सकते हैं, कि कानून तो है ना अपनी जगह पर मौजूद, दस्तूर साज़े के अंदर वो पास हुआ वो भी है, ऑन पेपर भी मौजूद है, अब वो जब चाहेंगे अल्लाह की तौफीक मिलेगी ना, अल्लाह की तौफीक के बगैर तो वैसे भी किसी ने कुछ नहीं करना, वो उसको नाफे कर सकते हैं, तो इसको काफिरों का मुल्क नहीं कहा जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से ये जो बगावत है ये ऑन पेपर इस किस्म के सजा की मुस्तहिक होगी, ठीक है, इस तरह की जो डाकू रहजनी बम फाड़ देना लोगों को कत्ल कर देना, ठीक है, अमन को सल्ब करने की जो कोशिशें करना हरकतें करना, ये कुरानी रूह से इसी सजा का मुस्तहिक कहलाएगा, ये नहीं कहा जाएगा ये तो काफिर मुल्क में जाके कर रहे थे इस वजह से जो है वो ये सजा के मुस्तहिक नहीं है, नहीं ये हैं सजा के मुस्तहिक, ठीक है, और आप अलग सदा के मुस्तहिक हैं, ये नहीं है कि वो सदा के मुस्तहिक है तो अब आप किसी सदा के मुस्तहिक नहीं, भाई आप भी सदा के मुस्तहिक हैं, ठीक है, इस वाली के नहीं है, दूसरी किस्म की, भाई अल्लाह की सदा कोई एक शक्ल की थोड़ी होती है, आप दूसरी शक्ल की सदा के मुस्तहिक हैं, जब अल्लाह ताला के साथ खिलवाड़ करते हैं, अल्लाह के कुरान के साथ जो है वो आप तमाशे करते हैं, अब उसकी अलग सजाएं होती हैं भाई, ये वाली सजा नहीं होगी आपके लिए जो कि कुरान मजीद में फरमाया फौजु फतलू फौजुसलबू, ये वाली सजा नहीं होगी बस आपके लिए, कोई मुश्किल है इसको समझना? करारदादे मकासद खाली नहीं भाई, 1974 का जो, या 1973 का जो आईन है वो भी, वो तो उससे आगे बढ़ करके इस्लामी आईन बनाया गया था ना, ठीक है, तो खाली करारदाद मकासद 1948 में पास हुई थी, तो ये करारदादे हैं हमारे पास उससे एक बढ़ के। अच्छा तो आगे फरमाते हैं कि अब सुनिए कि डाका और रहजनी की शरी सदा क्या है। आयत मस्कूरा में रहजनी की चार सदाएं मस्कूर हैं, युकत्तलू अव युसल्लबू अव तुक़त्ता अईदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन अव युनफ़ौ मिन अर्द, ये चार सजा, यानी उनको कत्ल किया जाएगा या सूली चढ़ाया जाएगा या उनके हाथ और पांव मुख्तलिफ जानिबों से काट दिए जाएंगे या उनको जमीन से निकाल दिया जाएगा। इनमें से पहली तीन सजाओं में मुबालगे का लफ्ज बाबे तफ़ईल से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अब देखें वो है ना कि मौलवी के बगैर गुजारा नहीं है, जिस तरह तौबा के बगैर गुजारा नहीं है उसी तरह मौलवी के बगैर गुजारा नहीं है। मौलवी किस चीज को कहते हैं? मौलवी उसको कहते हैं कि जिसने किताबें घोल के पी ली हो या किताबों को पढ़ लिया हो अपने असातिज़े के साथ बकायदा नज़म के अंदर रहते हुए, ठीक है ना, यानी बकायदा टाइम वाइम सेट करके असातिज़ा के साथ बैठ करके किताबें पढ़ता हो, या किसी मदरसे जिसमें टाइमिंग सेट हुई हुई है उस मदरसे में जाके किताबें पढ़ता हो, ये दोनों तरीके से किताबें पढ़ने वाला मौलवी की डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है, तो मौलवी ने तो फिर इल्मुस्सर्फ पढ़ी होती है ना, और इल्मुस्सर्फ का जो आखिरी हिस्सा है वो क्या है, खासियात अबवाब, तो ये खासियात अबवाब के बगैर ये चीज समझ में नहीं आती, ठीक है, आ नहीं सकती, जिसने खासियात पढ़ी है उसको ये बात समझ में आएगी। तो क्या फरमाया कि जो बाबे तफ़ईल होता है ना ये तकरारे फेल और शिद्दत पर दलालत करता है, ये इसकी खासियत है इस बात की, ठीक है, इसमें सीगा जमा इस्तेमाल करके इस तरफ भी इशारा फरमा दिया कि उनका कत्ल या सूली चढ़ाना या हाथ पांव काटना आम सजाओं की तरह नहीं, कि जिस फर्द जुर्म साबित हो सिर्फ उसी फर्द पर सजा जारी की जाए, बल्कि ये जुर्म जमात में से एक फर्द से भी सादिर हो गया तो पूरी जमात को कत्ल या सूली या हाथ पांव काटने की सजा दी जाएगी, ठीक है, तो एक तो बाप की खासियत और दूसरी कि उसका जो सीगा है वो जमा का सीगा है, ठीक है, तो ये तो बारीकियां है ना, ये तो किसी पढ़े लिखे इंसान के अलावा किसी को समझ में नहीं आ सकती। नीज इस तरफ इशारा कर दिया कि ये टाइम हो गया बस, कि ये कत्ल व सल्ब वगैरह कसास के तौर पर नहीं कि औलिया मकतूल के माफ कर देने से माफ हो जाए, बल्कि ये हद शरई बहैसियत हकुल्लाह के नाफिज की गई है, जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है वो माफ भी कर दें तो शरण सदा माफ नहीं हुई, ये दोनों हुक्म बसीगे तफ़ईल जिक्र करने से मुस्तफाद, ठीक है, यानी ये हुक्म किस वजह से लगाए गए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने तफ़ईल का सीग का बाब इस्तेमाल किया है और जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, तो अब इस तरीके से फिर फुकहा ने उसमें से ये हुक्म अखज़ किया, ठीक है, कि ये क़िसास की तरह से वाला हुक्म नहीं है, ठीक है, शिद्दत और तकरार फेल की वजह से ना, ठीक है, रहजनी की ये चार सजाएं हर्फ औ के साथ जिक्र की गई है। अब है अगला मसला कि इन चारों के दरमियान औ, जिसका क्या अंग्रेजी में तर्जुमा ओ आर और से बनता है, उर्दू में या, ठीक है, तो हर्फ औ के साथ जिक्र की गई है जो चंद चीजों में इख्तियार देने के लिए भी इस्तेमाल होता है और तकसीम कार के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी काम को तकसीम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कार मीनिंग काम, इसीलिए फुकहाए उम्मत सहाबा व ताबईन की एक जमात हर्फ औ को तखीर के लिए करार देकर, यानी इख्तियार के लिए, तखीर का मतलब इख्तियार देना, उसके लिए करार देकर इस तरफ गई है कि इन चार सजाओं में इमाम व अमीर को शरण इख्तियार दिया गया है कि डाकुओं की कुव्वत व शौकत और जराइम की शिद्दत व खिफत पर नजर करके उनके हस्बे हाल ये चारों सजाएं या उनमें से कोई एक जारी करे। तो एक जो है ना, फिर इसमें फिर जो इल्मी ओपिनियन बन गया, फुकहा का ओपिनियन बन गया, वो क्या कि चारों को नाफिज करनी है या कौन सी नाफिज करनी है और कितनी शिद्दत के साथ नाफिज करनी है, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने हाकिम वक्त को दिया। ठीक है, और दूसरा फिर वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त क्लास का टाइम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अल्लाह ताला बात की समझ और अकल सलीम और कल्ब सलीम के साथ इसको कबूल करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कम अज कम हम अपने इनफरादी लेवल के ऊपर तो करें ना अमल, और अपने घर के लेवल के ऊपर तो करें ना, और अगर खानदान के लेवल पे कर सकते हैं तो खानदान के लेवल पे तो करें ना। ठीक है, मुल्क का हाल वो अल्लाह के हवाले यार, ये जमीन अल्लाह की है। ठीक है, जिसको चाहता है इन्नल अर्दा लिल्लाही यूरिथुहा मन यशाउ, जिसको चाहता है वो उसका वारिस बनाता है। तो भाई अल्लाह ताला जिसको वारिस बनाते हैं, अब अल्लाह ताला उसको तौफीक भी दे सकते हैं या अल्लाह ताला किसी दूसरे को वारिस बना के उसको तौफीक दे देंगे। हमारा काम तो अपने ऊपर लागू करना है। ठीक है, हमसे तो हमारी नेमतों का सवाल होगा, ना कि प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान की नेमतों का सवाल होगा। राइट, तो जब अपनी नेमतों का सवाल होगा तो अपनी नेमतों की फिक्र करने की जरूरत है या सदर साहब की नेमतों की सदर की फिक्र करने की जरूरत है? वो तो हम एक उमूमी सोच की इस्लाह के लिए बातें कर रहे हो, ना कि हम उसके जिम्मेदार हैं। नहीं, हम लोगों को ठीक करने के जिम्मेदार नहीं है, हमसे तो हमारी नेमतों का सवाल होगा ना, और जिसका क्या अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदार बनाया, राबी बनाया। तो यही है पूरा का पूरा दीन, कि अपने रैयत को देखो और उसकी इस्लाह करो। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बाकी अल्लाह ताला रैयत बढ़ाएगा तो फिर देखना बाकी रैयत को, अभी तो छोटी सी है, उसी का फिक्र करो। अल्लाह ताला बात की समझ आवे तो तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआ अना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।